വസുദേവ സുതൻ ദേവം കംസചാനൂർമർദനം ദേവകീ പരമാനന്ദം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും ലോകം കരോതി വാചാലം തന്വം ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃതാത്മഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം നവീന ജലദാവലി ലളിത കാന്തി കാന്താകൃതി സ്ഫുരന്ന കരകുണ്ടല പ്രസിന ചാരുഗന്ധസ്ഥലം പ്രഫുണ്ടലിലാങ്ങലിനായ തീക്ഷണമുക്ഷണൈകക്ഷണം സ്വകാസ്തു മുനുമാനസം സദകൃഷ്ണ തത്വശ്രിയ പൂജ്യപാദ് ശ്രീ സ്വാമിജി മഹാരാജ് അന്യാന്യ മഹാത്മാവൃന്ദ് പൂജനീയ ദീപ്രഗുരുവൃന്ദ് ആദരണീയ മാതാവിന്റെ ബഹനെ भूमंडल में सबसे श्रेष्ठ और पवित्र देश है भारतवर्ष। देवता भी इसमें जन्म ग्रहण करने के लिए लालायित रहते हैं। भारतवर्ष में सप्तपुरियां सर्वश्रेष्ठ और परम पवित्र हैं। अयोध्या, मथुरा, नाला, काशी, कांची और अंतिका, पुरी, द्वारावती, चैव सत्यता मोक्षदायक है। इनमें भी स्वयं भगवान की पात्र लीला स्थली होने के कारण अयोध्या और मथुरा की विशेषता है। उपर्युक्त श्लोक में सबसे पहले अजन्मा की जन्मभूमि इन्हीं दोनों पावन पुरियों के नाम देकर इनका महत्व प्रदर्शित किया गया है। पद्म पुराण में मथुरा का महात्म्य बतलाते हुए स्वयं भगवान कहते हैं, अहो न जानन्ति नरा दुराशयाः पुरीं मदीयान्तरमं सनातनी सुरेन्द्र नागेन्द्र संस्तुतं मनोरमान्तां मथुरां सनातनी काश्यादयो यद्यपि सन्ति पुर्यः तासां तु मध्ये मधुरैव धन्याः യജ്ജന്മമുഞ്ചീ വൃത്തമൃത്യുദാഹയേ നൃണാം ചതുർദ്ധാ വിദധാതി മുക്തം വാബ്ബാലകോപി ധ്രുവോ യത്ര മമാരാധന തത്പരഃ താപസ്ഥാനം പരം ശുദ്ധം യത്ര യുക്തം പിതാമഹൈ താം പുരീം പ്രാപ്തു മഥുരാം മദീയാം സുരദുർലഭാം ഖഞ്ജോ മുക്ത്വാന്ധകോ വാപി प्राणानेव परित्यजेत। अहो, कितने आश्चर्य की बात है कि दूषित चित्त वाले मनुष्य मेरी इस उत्कृष्ट सनातन और मनोरम पुरी को, जिसकी देवराज इंद्र, नागराज अनंत और बड़े बड़े मुनीश्वर भी स्तुति करते हैं, नहीं जानते। यद्यपि काशी आदि अनेक मुक्तिदायिनी पुरियां हैं, तथा तुम सब में मथुरापुरी ही धन्य है, क्योंकि वह अपने क्षेत्र में जन्म, उपनयन, मृत्यु और दाह संस्कार, इन चारों ही कारणों से मनुष्य को मुक्ति देती है। ध्रुव ने बायक होने पर भी जहां भगवान की आराधना करके उस परम शुद्ध धाम को प्राप्त किया जो पिता वह ब्रह्मा आदि को भी नहीं मिला, वह मेरी पुरी मथुरा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जहां जाकर लंगड़ा अंधा मनुष्य भी प्राणों का परित्याग करता है तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। इस परम पावनी मथुरा नगरी में कंस के कारागार का वह स्थान परम धन्य है, जहां सर्वलोक महेश्वर, सर्वात्मा, सर्वमय और सर्वातीत योगेश्वरेश्वर स्वयं भगवान का दिव्य प्रातत्य हुआ था, और हम लोग भी परम धन्य हैं जो आज उनके दिव्य जन्म महोत्सव के इस परम पावन धन्य दिवस पर उसी परम पावन स्थान पर एकत्र होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, जहां आरंभ से लेकर अब तक के इसके कार्य संचालक, इसकी समिति के उत्साही और कर्मठ सभी सदस्य समस्त देशवासियों के कृतज्ञता के पात्र हैं, जिन्होंने इस पवित्र कार्य में समय, सम्मति, सत्परामर्श सहायता और साहस प्रदान कर देश का मुख उज्ज्वल किया है। मेरे सम्मान निमित्त श्री भगवान दास जी भार्गव और पंडित देवधर जी शर्मा का तो मैं विशेष रूप से कृतज्ञ हूँ, जो वर्षों से अत्यंत निर्भीकता, बुद्धिमत्ता तथा उदारता के साथ सारे बाधा विघ्नों का सामना करते और उन्हें हटाते हुए इस श्री कृष्ण जन्मभूमि के महान कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और जिनकी कृपा और प्रेम भरे आग्रह से मुझे सर्वथा आयोग्य होने पर भी आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पवित्र ब्रजभूमि के पावन रज का स्पर्श करने, यहाँ इस महान पवित्र कार्य में सम्मिलित होने और आप सबके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करने में मेरे सम्मान स्वामी जी श्री खंडानंद जी का प्रेम भरा व्यक्तिगत आवाहन भी कारण है, अतएव मैं उनका भी हृदय से कृतज्ञ हूँ। श्री कृष्ण जन्मभूमि उद्धार के इस महान कार्य से देश का मुख उज्ज्वल हुआ है। किसी एक पद्धति से होने वाली पूजा स्थली को तथा किसी अवतार अथवा महापुरुष के जन्म या लीला स्थल को बलात्कार से हस्तगत करके उस पर अपना अधिकार जमा लेना पाप है, और ऐसा अधिकार जब तक रहता है तब तक वह कलंक, वह पाप, उस पाप की स्मृति और तज्जन्य राग द्वेष बना रहता है। यहाँ का ये पाप कलंक मिटने से देश का यथार्थ में मुख उज्ज्वल हुआ है। अभी बाकी बहुत सा है। कुछ दिनों पहले तक हमारे देश में पर राज्य था, अब स्वराज्य है। इस समय तो ऐसा एक भी कलंक देश में नहीं रहना चाहिए। सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार सरदार पटेल महोदय के सत्य प्रयत्न से संपन्न हुआ। ऐसे ही काशी के पवित्र मंदिर, अयोध्यापुरी के पावन स्थान, सिद्धपुर का मंदिर तथा अन्य देश भर के सभी पवित्र स्थानों का उद्धार होना चाहिए। हमारे मुसलमान भाइयों को चाहिए कि वे स्वतंत्र देश के नागरिक की दृष्टि से लगे, देश पर लगे इन पाप कलंकों के जितने स्मारक हैं उनको वापस देकर पुण्य दर्शन बना दें। हिंदू अपने धर्म स्थानों पर उपासना करें, मुसलमान अपने स्थानों पर, इसी प्रकार सभी अपने अपने पवित्र स्थानों पर निर्विघ्नता से पूजा करें, तभी देश की शोभा है, तभी राज्य की शोभा है। आजकल गरीबों की गरीबी का लाभ उठाकर ईसाई प्रचारक देश में जहां तहां बड़े जोरों से ईसाई मत का प्रचार कर रहे हैं। कहीं कहीं कई मतों के लोग मंदिर मूर्ति आदि का ध्वंस कर रहे हैं। ये देश पर कलंक है। भगवान दो नहीं हैं, वे सभी के हैं, हिंदू के भी, मुसलमान के भी, ईसाई पारसी के भी तथा अन्य सभी के। मान्यता और पद्धति भिन्न भिन्न है और अपनी अपनी पद्धति से सबको निर्देश पूजा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसीलिए ऐसे स्थानों के उद्धार की परम आवश्यकता है, जिनका दूसरी पद्धति वालों ने बलात्कार से अधिकार कर रखा है और जो पाप के स्मारक के रूप में देश पर विद्यमान है। हमारे श्री कृष्ण तो ऐसे हैं कि उनकी ओर जिनकी दृष्टि गई वही अपनी सुदबुद्ध भूल कर लट्टू हो गया। अपने संप्रदाय में रहते हुए भी श्री कृष्ण का प्रेमी बन गया। ऐसे अनेकों मुसलमान महान भाग हुए हैं और आज भी हैं। उनमें से कुछ के उद्गार मैं आपको सुनाऊंगा। यूरोपियन बहुत से भक्तहृदय नरनारी ऐसे हैं जो श्री कृष्ण के चरणों में अपना सब कुछ न्योछावर कर प्रेम भिखारी बन गए हैं। ऐसे वर्तमान के कई मुसलमान यूरोपियन भाग्यशाली नरनारियों से मेरा परिचय है। अब कुछ उद्गार सुनिए। रहीम जी श्याम सुंदर की छवि को चित्त से टाल ही नहीं सकते। वे गाते हैं कमल दल नयन की उन्मान, बिसरत नाही मदन मोहन की मंद मंद मुस्कान, जसने की दुत चपला हूं तो चारु चपल चनकान, बसुधा की बस करी मधुरता सुधा पवी बकरान, चढ़ी रहे चित ही विशाल की मुक्त नाल लहरानी नित्य समय पीता अंदर की वे फहरी फहरी फहरानी। अनुदिन श्री वृंदावन गजने आवन जावन जान छवि रही चित तेन करती है सकल श्याम की बान। बाहिद नंद नंदन पर निरंतर लगन रहने की शुभ कामना करते हैं। सुंदर सुजान पर मंद मुस्कान पर बांसुरी की तान पर ठहरन सगीर है मूर्ति विशाल पर कंचन की माल पर खंजन की चाल पर ठहरन खगीर है भौवे धन नयन पर लोने जुग नयन पर शुद्ध रस बैन पर बाल पगीर है चंचल से तन पर सांवरे बदन पर नंद के नंदन पर लगन लगी रहे। पशुग्रस्त खान जी पशु पक्षी पत्थर बनकर भी कन्हैया के दास रहना चाहते हैं। मांस हूँ तो वही रस खान बसो मिल गो कुल गांव के द्वार में जो पशु हूँ तो कहा बस मेरे चरण लिप नंद की धेन मझारन। पावन हूँ तो वही गिर को जो पियो सुर छत्र पुरंदर धारण जो खग हूँ तो बसेरे करूँ मिल कालिंद कुल कदम दकीदारन। नजीर जय बोलते बोलते नहीं थक गए। तारीफ करूँ मैं अब क्या क्या उस मुरली धुन के बजैया की नित सेवा कुंज फिरैया की ये बन बन गबू चरैया की। गोपाल बिहारी बनवारी दुखहर नाम मेरे कन्हैया की गिरधारी सुंदर श्याम बरन और पंदर जोगी भैया की। वह लीला है यह लीला है उस नंद ललन मनमोहन जसुमत छैया की रस ध्यान सुनो दंडोत करो जय बोलो कृष्ण कन्हैया की। देवी ताज सब सहकर उनकी बनी रहना चाहती हूँ। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं देव पूजा ठानी तो निवाज हूँ भुलानी तुझे कलमा पुराण सारे गुण गहूंगी मैं। सांवला सलोना सिर पाद से कुल्लेदार तेरे में बाद में निभाज हो बहूंगी मैं। नंद के कुमार कुर्बान तारी सूरत पे तेरे नाल प्यारे हिंदुवानी हो रहूंगी मैं। ये भक्त निसारी हर शय में उनके नूर देखते हैं और उनके कदमों में ही बसे रहना चाहते हैं। जहाँ देखो वहाँ मौजूद मेरा कृष्ण प्यारा है उसी का सब जलवा जो जहाँ आशकारा है। तेरा दम भरते हैं हिंदू अगर नाकुस बचता है तुम्ही को शेख ने प्यारी अजा देकर पुकारा है। न होते जलवा अगर तुमको ये गिरजा कब का गिर जाता निसारी को भी तो आखिर तुम्हारा ही सहारा है। तुम्हारा नूर है हर शय में कोसे को प्यारे इसी से कहके हरिहर तुमको हिंदू ने पुकारा है। गुना बख्शे रसाई दे बसा लो अपने कदमों में बुरा है या भला है जैसा है प्यारा तुम्हारा है। हजरत नफीस खलीली ने तो कन्हैया के छवि पर अपना दिल उड़ा दिया। कन्हैया की आंखें हिरन सी नशीली कन्हैया की शोखी कली सी रसीली कन्हैया की छवि दिल उड़ा लेने वाली कन्हैया की सूरत लिहा देने वाली कन्हैया की हर बात में एक रस है कन्हैया का दीदार सीनी कसक है। इसीलिए तो हिंदी साहित्य गगन के शरदिंदु श्री भारतेंदु ने कहा इन मुसलमान हरिजनों पे कोट न हिंदुन वारी पर ये बिचारे हरि के जन मुसलमान करते क्या लाचार थे। उस सांवरे सरोनी की छवि माधुरी में ऐसा ही जादू है जिसने इस ओर भूले भटके भी निहार लिया वही बिट गया। इसीलिए घोषणा की गई मायात पांथा पथ भीम रथिया दिगंबर को पितमाल नील है विन्यस्त हस्ते नितंब बिंदे दूत समय कर्ष चित्त वित्तम। अरे पथिको उस राह मत जाना वो रास्ता बड़ा ही भयावना है। वहां अपने नितंब बिंब पर हाथ रखे जो तमाम शरीर का नील श्याम धूत बालक खड़ा है निर्भय, वो अपने समीप होकर जाने वाले किसी भी पथित का चित्रूपी धन टूटे बिनाने में रहता। इन्हीं सर्वजन मोहन सर्वजन मनमोहन श्री कृष्ण की उन्हीं की पुण्य जन्मस्थली में आज पुनः प्राकट हो रहा है, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अब श्री कृष्ण क्या है ये प्रश्न रहता है, सदा बना रहेगा क्योंकि असीम अनंत की सीमा कौन बता सकता है और कौन उनके स्वरूप कौन बता सकता है। वे सब कुछ हैं, सबसे सब कुछ से परे हैं, सर्वमय हैं, सर्वातीत हैं, अनंत असीम अलौकिक लौकिक वृद्ध धर्म गुणों का उनमें एक तो नहीं पूर्ण प्रकाश है। उनको जो दृष्टि से देखता है उन्हें ऐसे दिखाई देते हैं, उनकी कल्पना से नहीं, वे सब समय सभी कुछ है ही। भारत भक्तों की बात छोड़िए, महात्मा जी के साथी और अनुयायी बुद्ध बाबी श्री काका कालेरकर जी ने कहा है, श्री कृष्ण ने आर्य जनता को अधिक अंतर्मुख बनाया है, अधिक आत्मपरायण बनाया है, भोग और त्याग, गृहस्थाश्रम और संन्यास, प्रवृत्ति और निवृत्ति, कर्म और ज्ञान, ये लोक और परलोक इत्यादि सब जन्मों का विरोध ध्यास रूप है, सब एक ही तत्व भरा है। अपने जीवन और उपदेश से श्री कृष्ण ने यह बात सिद्ध करके दिखा दी। आज जीवन पर अधिक से अधिक प्रभाव तो श्री कृष्ण का है ही, फिर भी इस प्रभाव का स्वरूप ठहराना बड़ा कठिन है। जिस प्रकार अत्यंत सरल भाषा में लिखी गई भगवद गीता के अनेक अर्थ किए गए हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण के जीवन में विद्यमान रहस्य का भी विविध प्रकार से वर्णन होता रहा है। महाभारत के श्री कृष्ण, श्रीमद भागवत के कृष्ण, गीत गोविंद के श्री कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु के श्री कृष्ण और तुकाराम बुआ के श्री कृष्ण एक होते हुए भी भिन्न है। आजकल के जमाने में भी नवीन चंद्र सेन के श्री कृष्ण बंकिम चंद्र के श्री कृष्ण से भिन्न है और गांधी जी के श्री कृष्ण तिब्बत के श्री कृष्ण से जुड़ा है और अरविंद के कृष्ण तो सबसे न्यारे हैं। ऐसे सुलभ और दुर्लभ, एक और अनेक, रसिक और बैरागी, बागी और संग्राहक, प्रेमल और निष्ठुर, मायावी और सरल श्री कृष्ण की जयंती किस प्रकार मनाई जाए ये ठहराना बड़ा कठिन है। भगवान श्री कृष्ण समस्त अवतारों के मूल अवतारी, चतुर्भुवन सर्वप्रथम भगवान वासुदेव, समस्त भगवत स्वरूपों के अंशी, ब्रह्म की प्रतिष्ठा, सर्वेश्वरेश्वर, सर्वलोक महेश्वर, निर्गुण सूपभूत गुणमय, निराकार भौतिक आकार रहित परमेश्वर, अचिंतानंत सद्गुण समुद्र, सर्व गुणमय, सर्वमय, सर्वातीत सर्वात्मा, सर्वजीव प्राण, अखिल प्रेमास्मृत सिंधु, छोड़ सकलापूर्ण शैश्वर्य संपन्न, हानोपादान रहित नित्य सत्य दिव्य चिन्मय भगवद्देह रूप, दिव्य सच्चिदानंद प्रेम धन मूर्ति, पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं भगवान है, ऐसा विभिन्न शास्त्रों में वेद उपनिषद पुराण इतिहास संत ऋषि मुनि रोचित एवं अनुभवी महात्माओं के द्वारा पुनीत ग्रंथों में बार बार कहा गया है। इसके अतिरिक्त उनमें ऐसे सभी भाव वर्गों का विकास है जो कहीं भी एक स्थान पर नहीं मिलते। समस्त विभूतियां, समग्र जगत उन्हीं के एक अंश में स्थित है, एक अंश स्थित जगत, उनमें पूर्ण मानवता और पूर्ण भगवत्ता का युगपत प्रकाश है, तथा वे बुद्ध और निश्लेष के मूर्तिमय विग्रह हैं। जड़ और चेतन उन्हीं की प्रकृति है, क्षर अक्षर उन्हीं पुरुषोत्तम के आश्रित हैं। महाभारत आदि गर्भ में श्री कृष्ण के प्राकृत का वर्णन करते हुए कहा गया है, विश्ववंदित महायशस्वी भगवान जगत के जीवों पर अनुग्रह करने के लिए वसुदेव जी के द्वारा श्री देवी जी से प्रकट हुए। वे भगवान आज अंत से रहित दीप्यमान संपूर्ण जगत के कर्ता और प्रभु हैं। वे ही अव्यक्त अक्षर ब्रह्म त्रिगुणात्मक प्रधान हैं। वे आत्मा अव्यय प्रकृति प्रभव प्रभु पुरुष विश्वकर्मा सत्यगुण से प्राप्त होने योग्य प्रणवाक्षर अनंत अचर देव हंस नारायण धाता अजन्मा अव्यक्त पर अविनाशी कैवल्य निर्गुण विश्वरूप अनादि जन्मरहित और अधिकार है। ये सर्वव्यापी परम पुरुष परमात्मा सबके कर्ता संपूर्ण भूतों के पितामह हैं। उन्होंने ही धर्म के संवर्धन के लिए अंबक और विष्णुकुल में बलराम और श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। ये दोनों भाई संपूर्ण अष्ट शास्त्रों के ज्ञाता महापराक्रमी समस्त शास्त्रों के ज्ञान में प्रवीण, इससे भी भगवान श्री श्री श्रीकृष्ण स्वयं भगवान सिद्ध होता है। भगवान श्री कृष्ण परम योगी योग सिद्ध योगेश्वर महापुरुष है, इसके तो अनेक प्रमाण है। वे वर्णाश्रम अब ये थोड़े से में भगवान श्री कृष्ण के जीवन के गुणों का दिग्दर्शन है बड़े संक्षेप में, आदर्श गुणों का। वे वर्णाश्रम वर्णाश्रम धर्मानुसार आचरण करने वाले थे तथा नित्य नियमित वीतन कर्म अनुष्ठान करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आत्मध्यान स्नान संध्योपासन सूर्योपस्थान देवर्षि प्रत्यर्पण तथा गुरुजनों को प्रणाम करते थे। वे महादानी थे, प्रतिदिन वस्त्रालंकारों से विभूषित 84,013 दुग्धवती गौओं का दान करते थे। माता पिता की सेवा करते थे, गुरु सेवक थे, ब्राह्मण थे, भक्ति श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करते थे, महाऋषि मुनियों के द्वारा सुपूजित थे, सर्व ज्वर हारे थे, इंद्र का शक्ति गर्व ज्वर, ब्रह्मा का ज्ञान गर्व ज्वर, राजाओं का बल गर्व ज्वर उन्होंने अनायास हरण कर लिया था। वे लोकनायक थे, स्वयं आत्मकाम पूर्ण काम होने पर भी लोक संग्रह के लिए शुभ कार्य किया करते थे। सदा निष्काम थे, अत्याचारी राजाओं का ध्वंस किया तो स्वयं कहीं भी राजग्रहण नहीं किया। वे ममता शून्य थे, गांधारी के द्वारा अपने विशाल परिवार के विनाश का शाप सुनकर प्रसन्न हुए थे। वे लोक सेवक तथा दीन दुर्बलों के बंधु थे, दुष्टों का नाश करके उन्हें अपने परम धाम में पहुंचाना उनका सहज कर्म था। उनकी दीर्घायु का प्रत्येक दिन नहीं तो प्रत्येक सप्ताह धर्म संस्थापनार्थ युद्ध करके तथा दुष्टों का दमन करने में नहीं बीता। जिस समय वह अवतीर्ण हुए उसी समय से उनका यह दुष्टोद्धार कार्य आरंभ हो गया। जिस समय वे नंद भवन में बालक थे उसी समय कीर्तना शक्तासुर तुनावत आर्यसुरों को उन्होंने परम धाम पहुंचा दिया। गोकुल वृंदावन में 11 वर्ष तक गौवें चराई, द्वार सखाओं के साथ धमाचौकड़ी मचाई, गोप बालकों के साथ विचित्र लीलाएं की, निबंध निकुंजों में रस की नदियां बहाई, पर उस समय भी वे असुर राक्षसों की चटनी बनाने से नहीं चूके। पता नहीं कहां से बल का भंडार उनमें आ गया, शिक्षा प्राप्त करने उज्जैन तो कंस बेद के बहुत दिनों बाद गए, परंतु मुष्टिक चाणूर का चूरण तो उन्होंने इससे पहले ही बना लिया। कूटशल पोषण को तिनके के जो तोड़ दिया और कुगलिया की और सहस्र सहस्र हाथियों का बल रखने वाले मामा कंस का खचू में निकाल दिया। सारा बल तो इन्हीं से आता है, फिर उसमें बल की कौन सी बात। श्री कृष्ण बड़े अद्भुत कर्मा है, उन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े भूत कार्य किए। सबसे पहले कंस के कारागार में शंख चक्र गदा पद्मधारी अमित तेजस्वी सर्वालंकार विभूषित अद्भुत चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए। फिर पूतनादन हुए पुत्रों का उद्धार, ब्रह्मा जी का मोहभंग, दावा नलतान, गोवर्धन पूजन तथा गोवर्धन धारण, इंद्रगर्भ हरण, ब्रह्मलोक में पूजा, गोपियों को ब्रह्म तथा परम धाम का दर्शन कराना, रासलीला दोनों गोपियों के बीच में एक एक सूत्र प्रकट कर देना, सुदर्शन का उद्धार, शंखचूर्ण का उद्धार, मथुरा के मार्ग में कुंजर को भगवत दर्शन कराना, कुब्जा को सीधी करना, कंस के दरबार में निर्भूत दिखाना, मृत गुरु पुत्र को ला देना, मृग का उद्धार, ऋषियों का स्तरण स्वीकार करना, मृत देवकी के पुत्र को लाना, मिथुला में एक ही साथ विदूर धारण करना, द्रौपदी का चीर बढ़ाना, एक तत्ता खाकर सशिष्य दुर्भाषा का पेट भर देना, ब्रज में माता को, कर्व सभा में दुर्योधनादि को, धनुक्षेत्र में अर्जुन को तथा द्वारका लहर के समय उत्तंग को विद्र विचित्र विराट रूप दिखलाना, अर्जुन को दिखाए विराट रूप में भविष्य के चित्र, भीष्म द्रोणादि के उत्तमांगों का काल की बकवास दौड़ में चूर चूर दिखा देना, युद्ध के समय सूर्य को अकाल में छिपा देना, उत्तरा के गर्भ में मरे प्रतिशत को जला देना, नायक को प्रत्येक महल में दर्शन देना तथा त्रिभुवन मोहन विद्या दिव्य विग्रह का शरीर से ही परम धाम पधारना आदि सभी अद्भुत कर्म है। श्रीकृष्ण की नृत्य कला अनुपूर्णता भी अद्भुत है। शिव नृत्य तांडव और पार्वती नृत्य लास्ट कहलाते हैं। ಇನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರಾಸ ಮುಂದೆ ಜನತ್ತು ಸರ್ವ ಸಂಜಾಯ ಭಂಗ ಕ್ರೋಧೇನ್ ಮತ್ತು ಭೀಷಣ ವಿಷಧರ ಭುಜಂಗ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕ ಫಲಕ್ಕ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ತೋ ನಿತ್ಯ ಕಲಾಕಿ ಪ್ರಾಕಾಷ್ಟೇ ವಹಿ ಸಂಗೀತ ಸಾಧನ ಚಂದ್ರ ಲಾಭ ಹೋತಾ ವಿಷತ ಮನೋಯೋಗ ಸಂಗೀತ ಮೇ ಚಾರ ಮತ ಹೈ ನಾರದಮತ್ ಸಂಗೀತ ಭರತಮತ್ ಸಂಗೀತ ಹನುಮನ್ಮತ್ ಸಂಗೀತ ಕೃಷ್ಣಮತ್ ಸಂಗೀತ ಇನ್ನೇ ಸಬ್ಸೆ ಅಧಿಕ ಚಮತ್ಕಾರ ಪೂಜಾ ಕಹಿನ್ ಹೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಮತ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಹಾನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇನ್ಕಿ ಮುರಳಿ ಮಧುರ ಧ್ವನಿ ಚತುರ್ದಶ ಭವನೋ ಮೋಹಿತ ಕರ್ತೀ ಥಿ ಇಸ್ ಮುರಳಿ ಧ್ವನಿ ನೇ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸುಂದರಿಯೋ ಕೋ ಸಬ್ ಕುಛ ವಿಸ್ಮಿತ ಕರಾ ದಿಯಾ ಥಾ ಔರ್ ವೇ ರಾತ್ರಿ ಕೆ ಸಮಯ ಆಕರ್ಷಿತ ಹೋಕರ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಕೆ ಪಾಸ್ ಆ ರಹಿ ಥಿ ದೇವರ್ಷ ನಾರದ ಜಿ ನೇ ದೋ ವರ್ಷ ತಕ್ ಇನ್ಕಿ ಪಟರಾನಿ ಶ್ರೀ ಜಾಂಬವತಿಯ ಸತ್ಯಭಾಮಾ ಕೆ ನಿಕಟ ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಿಯಾ ಥಾ ತದನಂತರ ದೋ ವರ್ಷ ತಕ್ ಶ್ರೀ ಉತ್ಮನಿ ಜಿ ಕೆ ಸಂಗೀತ ಕಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ನಿಪುಣ ಲಾಭ ಕೀ ಥಿ ಜಿನ್ಕಿ ರಾಣಿಯಾ ನರಜಿ ಜೆ ಕುಶ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥಿ ಕೋ ಸಂಗೀತ ಕಿ ಪರಮೋಚ್ಚ ಶಿಕ್ಷಾ ದೇ ಸಕ್ತಿ ಹೈ ಇನ್ಕೆ ಆತ್ಮ ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾ ಜ್ಞಾನ ಕತನ ಆಗಾಧ ಹೋಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸತ್ಯಾದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಥೆ ರಾಧಜ್ಞ ಸರ್ವಸ್ಥ ರಹಿತ ಹೋಕರ್ ಭೀ ವೇ ಕಹತೆ ಥೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕೆ ಶತ್ರು ಮೇರೆ ಶತ್ರು ಹೈ ಔರ್ ಉನ್ಕೆ ಮಿತ್ರ ಮೇರೆ ಮಿತ್ರ ಹೈ ಇನ್ ಸತ್ಯ ಸೆ ಕಾ ಮೇ ಅಪ್ನಿ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಕಿ ತುಮ ಲೋಗೋ ಕಿ ಭಾಯಿಯೋ ಕಿ ತಥಾ ಅಪ್ನಿ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಾ ಕರ್ನೆ ಅಭಿಯುಕ್ತ ಆದರ್ಶ ಭೀ ಸಮಸ್ತಾ ಜಿತ್ನಾ ರಾಮ ಅರ್ಜುನ್ ಕಿ ರಕ್ಷಾ ಕರ್ನೆ ಸಮಸ್ತಾ ಬೃಂದಾವನ್ ಮೇ ತೋ ಹಜಾರೋ ಗ್ವಾಲ ಬಾಲೋ ಕೆ ಸಖಾ ಬನ್ಕರ್ ರಹೇ ಹಿ ಉನ್ಸೆ ನಿಸಂಕೋಚ ಬರ್ತಾವ್ ಕಿಯಾ ಖೇಲ್ ಮೇ ಹಾರ ಕರ್ ಉನ್ಕೆ ಘೋರೆ ಬನ್ಕರ್ ಉನ್ಹೇ ತೀರ್ಥ ಚಢಾಯಾ ದ್ವಾರಕಾ ಮೇ ದ್ವಾರಕಾಧೀಶ ಹೋನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಭೀ ಸುಧಾಮಾ ಸರೀಖೆ ಯೋಧನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕೋ ಗಲೆ ಲಗಾಯಾ ಅಪ್ನೇ ಪ್ರೇಮಾಶ್ರು ಸೇ ಉನ್ಕೆ ಚರಣ ಧೋಯೆ ಉಸ್ಕೆ ಪೈರ್ ದಬಾಯೆ ಉಸ್ಕೆ ಚರಣಾಮ್ ಸೇ ಅಪ್ನೇ ಮಹಲ್ ಕೋ ಬೈತ್ರ ಕಿಯಾ ಔರ್ ಉಸ್ಕೆ ಲಾಯೆ ಹುಯೆ ಫರ್ಶ್ ಪರ್ ಬಿಖರೆ ಚಿವರೋ ಕೆ ದಾನೋ ಕೋ ಬಟೇ ಕರ್ ಖರೆ ಖರೆ ಹೀ ಖಾ ದೇ ಉನ್ಕಾ ಸ್ವರ್ಗ ಮೇ ನಹೀ ಥಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಚ್ಚೆ ಗೋ ಸೇವಕ ಥೆ ಬರಸೋ ಗಾಯೋ ಕೆ ಪೀಛೆ ಪೀಛೆ ಬನ್ ಬನ್ ಭಟಕೆ ಉನ್ಕಿ ಸೇವಾ ಕಿ ಉನ್ಹೇ ಪ್ಯಾರ ದಿಯಾ ಉನ್ಕಾ ಪ್ಯಾರ ಲಿಯಾ ಉನ್ಕಾ ದೂಧ ಪಿಯಾ ಉನ್ಕೋ ಅಪ್ನಾ ಸ್ವರೂಪ ದಿಯಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭೋರ ಆತ್ಮೆ ಕಿ ಕಲಾ ಮೇ ಪರಮ ನಿಪುಣ ಥೆ ಉನ್ಹೀ ಕೆ ಸಂಚಾರಣ ಕೌಶಲ ಸೇ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣ ಕರ್ಮಾದಿ ಕೆ ವಿಷಣ ಬಾಣೋ ಸೇ ಅರ್ಜುನ್ ಕೋ ಸದಾ ಬಚಾಯಾ ಥಾ ಇನ್ಕೆ ಸಾರಥಿ ಪಂಕ್ತಿ ಕುಶಲತಾ ಕೋ ದೇಖ ಕರ್ ದೋನೋ ಓರ್ ಕಿ ಸೇನಾ ಕೆ ಸಭಿ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಧಾ ಚಕಿತ ಹೋ ಗಯೆ ಥೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮ ನೀತಿ ರಾಜನೀತಿ ವಿಶಾರದ ಮುಖನೀತಿ ಪರಮ ಜ್ಞಾತಾ ಥೆ ಇನ್ಹೋ ಯುದ್ಧ ಮೇ ಸಮಯ ಸಮಯ ಪರ ಪಾಂಡವೋ ಕೋ ನೀತಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದೇಕರ್ ಮಹಾನ್ ವಿಪತ್ತಿ ಸೇ ಬಚಾಯಾ ಥಾ ಇಸ್ ಕಾರ್ಯ ಮೇ ಇನ್ಕಿ ನಿಪುಣತಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೀ ಹೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಡೇ ರಾಜನೀ ಥೆ ಇನ್ಕೆ ಭಾಷಣ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಹೋತೆ ಥೆ ಜಬ್ ಯೇ ದೂತ್ ಬನ್ಕರ್ ಕಯ ದರ್ಬಾರ್ ಮೇ ಗಯೆ ತಬ್ ಬಹುತ್ ದೂರ್ ದೂರ್ ಸೇ ಬಡೆ ಬೂಢೆ ಜ್ಞಾನಿ ಉನ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಸುನ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ವಹಾಂ ಆಯೆ ಥೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಿ ಸನ್ನಾಡಕ ವಸಂತಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೈ ಇನ್ಹೋನೆ ಅನಿಮ ಶರ್ಮ ಮೇ ಆಯೆ ಹುಯೆ ಆಯೆ ಮನುಷ್ಯ ಕೆ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪ ಉನ್ಕೆ ನಾಶ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಜಿಮ್ಮ ಲೇನೆ ಕಿ ಖುದಿ ಘೋಷಣಾ ಕಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಡೆ ಹೀ ಬಡೋಲಿ ಹೈ ಬಾಲಕ ಪನ್ನಿ ಗ್ವಾಲ ಬಾಯೋ ಕೆ ಸಾಥ್ ರೋಗ ಸುಂದರಿಯೋ ಕೆ ಸಾಥ್ ಉನ್ಕಾ ವಿರೋಧ ಚಲತಾ ಥಾ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಜಿ ಕೆ ಸಾಥ್ ಏಕ ದಿನ ಐಸಾ ವಿರೋಧ ಕಿಯಾ ಕಿ ಉನ್ಕೆ ಮೂರ್ಛಾ ಆ ಗಯಿ ಭೀಮಸೇನ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಉನ್ಕಾ ಹಸಿ ಮಜಾಕ್ ಖೂಬ್ ಚಲತಾ ಥಾ ಇನ್ಕೆ ಸ್ವಭಾವ ಮೇ ಭೀ ಪ್ರಿಯತಾ ಥಿ ಸದಾ ಹಸ್ಮುಖ ರಹತೆ ಥೆ ಉನ್ಕೆ ಸಿಕ್ತಾ ಪರಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೈ ಕಿ ಸ್ವಯಂ ರಸರೂಪ ಹೈ ರಸರಾಜ ಹೈ ರಸಪೂರ್ಣ ಹೈ ಇನ್ಕಾ ಭವ ರಸಪೂರ್ಣ ಹೈ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ರಸಪೂರ್ಣ ಹೈ ಸದಾ ಮುಖ ರಸಪೂರ್ಣ ಹೈ ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಿಯ ಕೆ ರಸಪ್ರತ್ಯಂತ ಸದಾ ಸಾಗರ ಹೀ ಹೈ ಕೋರೋ ಕೋರೋ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಕರ್ನಾಳಿ ಇನ್ ರಸಮಯ ರಸರಾಜ ಕೆ ರಸೋತ್ತಾ ಸಾಕ್ಷ ಧನ್ಯ ಕರ್ ಚುಕಿ ಹೈ ಅ ಥೋಡಾ ಸಾ ಇನ್ಕೆ ದೇವಗುರು ಪರ ವಿಚಾರ ಕರೆ ವೇಸೆ ತೋ ಯೇ ಸ್ವರೂಪ ಸೇ ನಿತ್ಯ ಜಗದ್ಬಂಧ ಜಗದ್ಗುರು ಹೈ ಇನ್ಕಿ ಗೀತಾ ಐಸಿ ವಿಚಿತ್ರ ವಸ್ತು ಹೈ ಕಿ ಉಸ್ನೆ ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವ ಕ ಸದಾ ಕೆ ಲಿಯೆ ಅಪ್ನಾ ಶಿಷ್ಯ ಬನಾ ದಿಯಾ ಇನ್ಕಿ ಯೇ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅತ್ಯಂತ ಸಮಯ ಹೈ ಜೋ ಜಿಸ್ ಭಾವ ಸೇ ಉಸೆ ದೇಖತಾ ಹೈ ಉಸ್ಕೋ ವಹಿ ಭಾವಗೀತಾ ಮಿಲ್ ಜಾತಾ ಹೈ ಗೀತಾ ಸೇ ಹೀ ಉಸ್ಕಾ ಕಾರ್ಯ ಸಫಲ ಹೋತಾ ಹೈ ಬಂಗಾಲ ಕೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ತ್ಯಾಗ ಮೂರ್ತಿ ನವೀನಕೋ ಕೆ ಥಾ ಅಪ್ನೆ ದಮ್ ಔರ್ ದೂಸರೆ ಮೇ ಗೀತಾ ಥಿ ಬಡೇ ಬಡೇ ಧನಿ ಗೃಹಸ್ಥೋ ಕಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಗೀತಾ ಕರ್ತಿ ಹೈ ಔರ್ ಅರಣ್ಯವಾಸಿ ಸರ್ವತ್ಯಾಗಿ ವಿರಕ್ತ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕೋ ಭೀ ಗೀತಾ ಈ ಮಾರ್ಗ ದಿಖಾತಿ ಹೈ ಶಾಸನ ಭಾರ ಕೆ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವ ಕೆ ಲಿಯೆ ವೇ ರಾಜಪುರುಷ ಭೀ ಗೀತಾ ಕಿ ಶರಣ ಲೇತೆ ಹೈ ಔರ್ ತ್ಯಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಭೀ ಗೀತಾ ಸೇ ಪ್ರಕಾಶ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಗೀತಾ ಕೆ ಹಜಾರೋ ಭಾಷ್ಯ ಅನುವಾದ ವಿವಿಧ ಭಾಷಾ ಮೇ ಹೈ ಔರ್ ಅಭಿ ಹುಯೇ ಚಲೇ ಜಾ ರಹೇ ಹೈ गीता में इस सब को अपने सिद्धांत का मूल दिखाई देता है। सांख्य योग वेदांत उपासना राजनीति समाज नीति के सभी मूल तत्व सर्व संक्षिप्त व्याख्या गीता में है। ज्ञान योग भक्ति योग कर्मयोग कर्म संन्यास निष्कर्म सर्वधर्म संन्यास द्वैत अद्वैत शुद्धा अद्वैत विशिष्टा अद्वैत द्वैताद्वैत आदि सभी मतों के मानने वाले आचार्यों और उनके अनुयायियों ने गीता से अपने मत की पुष्टि की है। स्थान त्रयी में गीता के बिना काम नहीं चलता। आज भी विद्वानों और राजनीतिक महारथियों तथा अन्य क्षेत्र के लोगों का भी काम कब नहीं चलता। लोकमान्य ने कारागार में गीता पर गीता रहस्य लिखा, महात्मा गांधी ने अनाशक्ति योग लिखा, संत विनोबा ने गीता प्रदर्शन लिखा, न मालूम कितने ग्रंथ और लिखे गए लिखे जा रहे हैं, कितने प्रज्ञानवाद हुए रहे। अभी अभी हमारे मित्र डॉक्टर हेमंतराय जी बच्चन जी यहां बैठे हैं। हिन्दी के प्रसिद्ध कवि ने अरबी भाषा में जनगीता लिखी है जो दिल्ली से आज ही प्रकाशित हुई है। अब तक अनेकों ऋषि महर्षि आचार्य कवि मनीषी हो गए, परंतु हर क्षेत्र में सारथी के रूप में हाथ में चाबुक लिए और घोड़ों के लगाम थामे रथ पर बैठे श्री कृष्ण के से कही गई छोटी सी गीता के जैसी कोई भी पुस्तक आज तक नहीं निकली। स्मरणीय भगवान श्री शंकराचार्य के सदृश ये नरक ग्रामी होंगे। महात्मा गांधी श्री अरविंद लोकमान्य तिलक महात्मा थोरो जे एम फरकेहर एस टी बुक्स सर विडी एडविन आर्नॉल्ड्स हेमिल्ट ब्रॉन ग्लाजेनेक ये जर्मनी के बड़े विद्वान हैं। जोहर्स स्ट्रॉस ऑगस्ट विलहेम वॉन श्लिरेन विलहेम वॉन हुम्बोल्ट ये इनके मैंने मत दिए हैं, मैं भाषा पर मिल रहा हूं। इन सब ने गीता की बड़ी महिमा गाई है। श्री कृष्ण इतने जगतगुरु होने के साथ साथ हमारे स्वामी जी महाराज की व्याख्या के अनुसार श्री कृष्ण को पूजी प्रतीक वंश तथा उनके अनुयायियों के विरोधी जननेता भी हम बड़े मजे में कह सकते हैं, जिन्होंने महान क्रांति करके अत्याचारी का सपक्ष विनाश किया, रूपसेन को राजा बनाकर मानो जनराज्य की स्थापना की और देश को आधुरी आसुरी अधिकार से मुक्त किया। श्री कृष्ण समाज सुधारक भी हैं, उन्होंने गोवर्धन पूजा की नई प्रथा चलाई, सुधार और बहुत से किए, दुर्गा के साथ उनका पालन किया, गरीबों के साथ मिलकर रहने में उनको बड़ा आनंद आता था, इससे वे गरीबों के बंधु माने जाते थे, स्त्री जाति के रक्षक थे, उनका सम्मान करते थे। ब्रज की गोप रमणीया इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। एक बड़ी विचित्र घटना है उनके जीवन में। प्राग ज्योतिषपुर में 16,000 राजकन्याएं कैद थी, श्री कृष्ण ने भौमासुर का अभ्यास करके उन कन्याओं को मुक्त किया, संतों से दया कौन करता, तो श्री कृष्ण ने उन सब कन्याओं पर दया करके उनको अपनाया तो स्वयं अपनी रानी बनाना स्वीकार किया। श्री कृष्ण के अनंत सद्गुण है, उनका वर्णन कौन कर सकता है, पर जब वे पूर्ण मानव है पूर्ण भगवान है तब उनमें तामसी कहे जाने वाले भावों का भी समावेश होना चाहिए। तो स्वयं कहते हैं युचे सात्विका भावा राजसास्ताम शास्त्रे मत को विदता अनुबिधि, जिसने जो भी सात्व राजस्थान स्वभाव है तो मुझसे ही होते हैं ऐसा जाओ। तब बिचारे राजस्थान स्वभाव कहाँ जाए, तो राजस्व उनकी प्रवृत्ति में है ही। तामस भाव में काम क्रोध लोभ भय चोरी परपीड़न मिथ्या भाषण आदि माने जाते हैं। अतिथि कृष्ण में भी काम है, वे अपने भक्तों की प्रेमियों की सदिच्छा पूर्ण करने के लिए सदा कामना करते हैं, अतः उनका ये उनका काम है। बाल लीला में गो सेवा देने पर माता पर क्रोध करते हैं और दही का मत का खोद डालते हैं, ये प्रत्यक्ष क्रोध है। राक्षसासुरों पर क्रोध करके वध के द्वारा उनका उद्धार करते हैं, ये भी क्रोध का एक रूप है। यशोदा मैया का स्तनपान करने से कभी अघाते ही नहीं और प्रेमीजनों को सुख देने से कभी तृप्त होते ही नहीं, ये उनका लोभ है। माता की छड़ी और लाल आंखें देखकर भयभीत हो आंखों में आंसू भर लेते हैं और भाग छूटते हैं, ये उनका भय है। अपनी जादू भरी तिरछी नजर से देखकर और मुरली ध्वनि सुनाकर सबके चित्त वित्त की नित्य चोरी करते रहते हैं, ये उनकी चोरी है। अथवा गोपीजनों के मन में जब श्री कृष्ण को माखन खिलाने की नई पद्धति आती है और वे चाहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे घरों में चोरी से आकर घुस जाएं और हम उन्हें देखते रहें,
इस प्रकार उनके मनों में इच्छा उत्पन्न करके उन्हीं की इच्छा पूर्ति के लिए उनके घरों में माखन चुराकर खाना चोरी है ही। प्रेमियों को चिरकाल तक विरह यातना का सुख देते रहना, सुख देते रहना, ये उनका सर्वपीड़न है। और प्रेम रस की वृद्धि के लिए बाघ छड़ करना ये मिथ्या भाषण है। अथवा स्वयं स्वरूपता है कुछ भी नहीं खाने वाले होने का मैया से कहते मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये भी मिथ्या भाषण है। श्री कृष्ण के अनंत गुणों का कोई वर्णन नहीं कर सकता। हमारा बड़ा सौभाग्य है जिस भारत भूमि में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए उसी में आज हम भी जीवन धारण कर रहे हैं। और तुच्छ मच्छर के अनंत आकाश में उड़ने के सदृश उनके गुणगान का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों ने मुझको कृपापूर्वक सौभाग्य प्रदान किया, इसके लिए मैं आपके प्रति हृदय से कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। और आज्ञानुसार श्री कृष्ण मंदिर का उद्घाटन हो ही चुका है, अभी भी पूरी श्री कृष्ण जन्मभूमि का उद्धार नहीं हुआ है, ये उद्धार करना बाकी है। आप मथुरा वासियों का हम सबका कर्तव्य है, और बुद्धि आ जाए तो उन भाइयों का भी ये कर्तव्य है कि वे अपनी इच्छा से ही इस ताप को हटा दें। इस मंदिर के निर्माण में भाई जयदयाल डालमिया की ओर से धन की सहायता प्राप्त हुई है। अब अंत में आप लोगों से आशीर्वाद चाहता हूं। जाह देख चाहत नहीं कछु देख मन मोर, बसो सदा मेरे दुर्गन सोई नंद किशोर। तब मन सब लिपटे रहे नित्य प्रियतम के संग अंग, तब मन सब लिपटे रहे नित्य प्रियतम के अंग, भुक्त नित्य की कल्पना करे न यह सुख भंग। भूल जाए सुध जगत की भूले घर की बात, भूल जाए सुध जगत की भूले घर की बात, हिय सो हिय लागो रहे बिन बाधा जनरात, हिय सो हिय लागो रहे बिन बाधा जनरात। इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा बने श्याम के धाम, इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा बने श्याम के धाम, सब में सदा बसो रहे प्रियतम मधुर ललान, सब में सदा बसो रहे प्रियतम मधुर ललान। बोलो आनंद कंद भगवान जय हरिंद। तुम लंघयते गिरिं यत्कृपा तवहं वंदे परमानंद माधवम्। नवजलधरवर्णम् चंपकोद्भासकरणम् विकसित नलिनाश्यम् दुःस्फुरन् मंदहास्यम् कनकरुचितकूलम् चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम्। परम सम्मान्य महात्मा विप्रवृंद, मैं माननीय शेख जी आचार्य महोदय, मथुरा के पुण्य निवासी गण, महानुभाव बहनों और माताओं, अभी आप लोग बड़े अच्छे अच्छे भाषण सुन चुके हैं और महाराष्ट्र देखने के लिए समुत्सुक हैं, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में केवल 15-20 मिनट में आज प्रातःकाल के भाषण से और अभी मैं जो कुछ कहना चाहता था उसमें से कुछ थोड़े से शब्द आपको सुना दूंगा, जिससे आप लोगों के महाराष्ट्र देखने में विघ्न रूप में न बनूं और एक बड़ा सुंदर आनंद जो आप प्राप्त करने वाले हैं उससे जरा भी वंचित न हों। अभी का जो भाषण है ये भी मेरे कलकत्ते के मित्र ने छपवा के भेज दिया,
इसमें से थोड़ा सा मैं सुना देता हूं। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, निखिल विश्व ब्रह्मांड के लिए महान महिमामय, महान मंगलमय, महान मधुमय और महान ममतामय ये धन्य दिवस है। आज के ही दिन इसी भारत में मथुरा के इसी कंस कारागार में सर्वलोक महेश्वर, सकल ईश्वरेश्वर, सर्वशक्तिमान, नित्य निर्गुण सगुण, सकल अवतार मूल, सर्वमय सर्वातीत, अखिल सामर्थ्य सिंधु स्वयं भगवान श्री कृष्ण का दिव्य जन्म हुआ था। ये नित्य जन्मा का जन्म बड़ा ही विलक्षण है। इस दिव्य जन्म को जानने वाले पुरुष जन्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। स्वयं भगवान ने कहा, जन्म कर्मच में दिव्यो नेवम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जिस मंगलमय क्षण में इस परमानंद घन का प्राकट्य हुआ, उस समय मध्य रात्रि थी, चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था, परंतु अकस्मात सारी प्रकृति उल्लास से भरकर उत्सवमयी बन गई। महाभाग्यवान श्री वसुदेव जी को अनंत सूर्य चंद्र के सदृश प्रचंड और शीतल प्रकाश दिखलाई पड़ा और उसी प्रकाश में दिखलाई पड़ा एक अद्भुत बालक, श्याम सुंदर, चतुर्भुज, शंख गदा चक्र और पद्म से विभूषित, कमल के समान सुकोमल और विशाल नेत्र, वक्षस्थल पर श्रीवक्ष और भृगुलता के चिन्ह, गले में कौस्तुभमणि, मस्तक पर महान वैदूर्य रत्न खचित, चमकता हुआ कीच, कानों में झलमलाते हुए कुंडल, जिनकी प्रभा अरुणाभ कमोलों पर पड़ रही है, सुंदर काले घुंघराले केश, भुजाओं में बाजूबंद और हाथों में कंकन, कटिदेश में देवीतमान करभनी, सब प्रकार से सुशोभित, अंगमुख से सौंदर्य की रसधारा प्रवाहित हो रही है। कैसा अद्भुत बालक, मानव बालक माता के उदर से निकलते हैं तब उनकी आंखें मुदी होती हैं, दाई पोंछ पोंछ कर उन्हें खोलती हैं, पर इनके तो आकर्ण विशाल निर्मल पद्म सदृश सुंदर नेत्र हैं। संभव है कहीं अधिक भुजा वाला बालक भी जन्म जाए, परंतु इनके तो चारों हाथों में दिव्य आयुध आलुक विभूषित हैं। साधारणतया अलंकारों से बालकों की शोभा बढ़ती है, परंतु यहां तो ऐसा शोभामय बालक है, इसके दिव्य के से संलग्न होकर अलंकार शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा पूर्व बालक कभी किसी ने देखा नहीं, सुना नहीं, ये दिव्य जन्म है। वास्तव में भगवान सदा ही जन्म और मरण से रहित हैं, नित्य हैं, सत्य हैं, जन्म और मृत्यु प्राकृतिक देह में होते हैं। भगवान का मंगल विग्रह प्राकृति ही नहीं, परम दिव्य है, न वह कर्मजनित है, न पांच भौतिक है, वह नित्य सच्चिदानंदमय भगवत देह है, शाश्वत और हानोपादान रहित स्वरूपमय है। उनके आविर्भाव का नाम जन्म है और उनके इस लोक से दृश्य हो जाने का नाम है देह त्याग। इसके बाद प्राकृत देह और भगवत देह के भेद पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, मन्वंतरावतार के भेद, समस्त रूप एक होने पर भी शक्ति अभिव्यक्ति के भेद से नाम भेद, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण में सबका समावेश ये बतलाया गया है। और ये छंद है लोचन मीन लसे पद पूरम कोल बराबर की छवि छा जाए कोल धराधर की छवि छा जाए ए बली मोहन सावरे राम है दुर्जन राजन को हनि का जाए है बल में बल ध्यान में बुद्ध लखे कल की विपदा सब भागे मदन सिंह में कानपुर में सगरे अवतारन के गुण राजे सारे अवतारों के गुण श्री भगवान कृष्ण साक्षात स्वयं भगवान है। विष्णु पुराण में कहा कि श्री कृष्ण केश पुरुषावतार के केशरी वंशावतार है। महाभारत में इन्हें नर नारायण का अवतार बताया गया कहीं वामनावतार कहा कहीं भगवान विष्णु का अवतार बतलाया ये सभी वर्णन ठीक हैं। विभिन्न कल्पों में विभिन्न श्री कृष्ण के अवतार होते हैं। श्री सारस्वत कल्प में स्वयं भगवान अपने समस्त अंश कलाओं कला वैभवों के साथ परिपूर्ण रूप से प्रकट हुए हैं। अतएव इनमें सभी का समावेश है। ब्रह्मा जी ने स्वयं इनकी पूर्णता को अपने दिव्य नेत्रों से देखा। ये समस्त जीवों के समस्त देवताओं के समस्त ईश्वरों के समस्त अवतारों के एकमात्र कारण आश्रय स्वरूप हैं। श्रीकृष्ण केशावतार नारायणावतार पुरुषावतार सभी उनके अंतर्गत हैं। वे क्या नहीं हैं? वे सबके सब कुछ हैं। वे ही सब कुछ हैं। समस्त पुरुष अंश कला विभूति तथा लीला शक्ति आदि अवतार उन्हीं में अधिष्ठित हैं। इसी से वे स्वयं भगवान हैं। विष्णु भगवान स्वयं। इसके बाद ब्रह्म वैवर्त का एक अवतरण है जिसमें दिखाया गया है कि भगवान नारायण भगवान महाविष्णु और नारायण ऋषि तीनों का समावेश राज्य के ईश्वर में हो गया और वे कृष्णावतार के रूप में प्रकट हुए। इसके पश्चात भगवान की प्रार्थना जब की गई तो आकाशवाणी हुई। उसके द्वारा ये बताया गया कि स्वयं भगवान ने अवतार लेने की घोषणा की। अब थोड़ा सा श्री कृष्ण के सौंदर्य पर एक श्लोक। इनका श्री कृष्ण का दिव्य रूप बड़ा मनोहर बड़ा सुंदर। नामकरण संस्कार करने के लिए पंडित जी आए। भगवान का नामकरण संस्कार करने के लिए गर्भमुनि आए और इनके अशुद्धपूर्व दिव्य रूप सौंदर्य को देखकर अपनी दशा भूल गए और बोले धैर्यं धिनोत्वत कंपयते शरीरम धैर्यं धिनोत्वत कंपयते शरीरम रोमांचयत्ति विलोपयते मसिंच संतास्त नाम करनाय समागतो ह मानोपतन पुनरनेर ममैव नाम। तो कहने लगे मेरा धैर्य छूट रहा है। शरीर कंपित तो रोमांचित हो रहा है। बुद्धि भी लोक भूल जा रही है। आश्चर्य है कि मैं जिनके नाम करने के लिए आया उन्होंने स्वयं मेरा ही नाम मिटा दिया। नाम रूप मिटने वाले परितमुक्ति होती है। पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं रे चेता कथयान के हितमदम वृंदावने चारयन वृंदम कोप गवान वामुदन भो बंधुर्न कार्यस्तवया सौंदर्यामृत मुद्गिर विरभित सम्मोह मंदस्मृतर रेव एष तल बल्लवास विषयान आसुख्यम नेष्यति। अरे चित्त, अपने चित्त से कहते हैं अरे चित्त सावधान रहना, तू वृंदावन में गोचराने वाले नवीन नील नीरज के समान नील श्याम क्रांति वाले किसी पुरुष को अपना बंधु मत बना लेना। कहीं बना लिया तो अपनी सौंदर्य सुधा वर्षिणी मंद मुस्कान से तुझे मोहित कर लेगा और तेरे समस्त विषयों को तुरंत नष्ट कर डालेगा। सच है उनकी सौंदर्य सुधा मई मुस्कान के सामने विषय विषय कैसे रह सकता है। माँ कवि भवभूति का एक श्लोक बड़ा सुंदर, वे शैव है, वे कहते हैं शैवावयम नखल तत्व विचारणीयम पंचाक्षरी जगपरा नितरांत था चेतो मरी मत सिंह कुसुमावभाषम पुरान स्मृति गोप बधू किशोरम। करे लगे मैं शैव हूँ, इस संबंध में तो कोई विचार की आवश्यकता ही नहीं, तो तुम मैं तो सदा सर्वदा नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र को जपता रहता हूँ। इतना होते हुए भी मेरा मंत्र निरंतर अतिशी कुसुम सुंदर गोप बधू किशोर श्री श्याम सुंदर के मधुर मुस्कान भरे मुख का स्मरण करता रहता है। महाराज दोष में बहुत सुना दू, खत्म करूंगा। बड़े सुंदर श्लोक मधुर स्वामी अद्वैत सिद्धिकार वे महाराज युद्ध गए, उनके सामने एक बार ये झांकी श्याम सुंदर की आ गई, लुट गए। बोले अद्वैत दीथी पथि के रूपाश्या स्वराज सिंहासन नीक्षा सठेन प्रेनाति वयम हथेना दासी कृता गोप वधू बिठेना। मैं तो अद्वैत पथ से स्वराज सिंहासन पर आयुण हो गया था, परंतु माताओ बैठ जाओ, परंतु ये शठ बड़ी सुंदर भाषा है भला, ये ब्रज की भाषा में भगवान को छलिया कहते हैं, कैतव कहते हैं, यहाँ भगवान सब कुछ बन जाते हैं। तो कहते हैं किसी ये शठ गोपी वल्लभ ऐसे ऐसे ज्ञानी महारथियों को भाई माता जरा बनवाई कुमार का उपासक था, परंतु किसी शठ ने मुझे अपनी रत्ना दासी पर दास बना लिया। जन्मभूमि के बाद वहां पर कंस का कारागार था और इस जन्मभूमि पर न मालूम कितनी बार कितने कितने जुल्म हुए, कितने कितने आक्रमण हुए। सन 1640 में यहाँ जो मंदिर बना था उस मंदिर में उस समय 33 लाख रुपए लगे थे, सन 1640 में। उसके बाद परिवर्तन होते रहे, वो मंदिर टूटा, उस मंदिर के बाद फिर मंदिर बने और आज जो हमारे सामने ये बड़ी मस्जिद खड़ी हमारी छाती पर, ये एक महान अत्याचार हुआ। बड़ी लगन से प्रातस्मरणीय महात्मा मालवीय जी के तथा आदर्श संत युगल किशोर जी के उत्साह से ये जन्मभूमि उन्नत जन्मभूमि के गौरव को प्राप्त कर सके। इसमें केवल एक बात कहनी है और वो सबको ध्यान में रखने की है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के इस महान कार्य से देश का मुख उज्ज्वल हुआ। किसी एक पद्धति से होने वाली पूजा स्थली को और किसी अवतार तथा महापुरुष के जन्म विनाय स्थल को बलात्कार से हस्तगत करके उस पर अपना अधिकार जमाना पाप है। और ऐसा अधिकार जब तक रहता है तब तक वो कलंक, वो पाप, उस पाप की स्मृति और सज्जन राग द्वेष बना रहता है। यहाँ का ये पाप कलंक मिटने से देश का मुख उज्जवल वास्तव में हुआ। कुछ दिनों पहले तक हमारे देश में परराज्य था, अब स्वराज्य है। इस समय ऐसा एक भी कलंक हमारे देश में नहीं रहना चाहिए। सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार स्वर्गीय सरदार पटेल के परम पावन कृति से हुआ। ऐसी श्री काशी के दिव्य मंदिर, अयोध्या के पावन स्थान, सिद्धपुर का मंदिर, अन्यान्य सारे स्थान पवित्र स्थानों का उद्धार होना चाहिए। हमारे मुसलमान भाइयों से ये निवेदन है, उन्हें चाहिए कि वे स्वतंत्र देश के नागरिकों दृष्टि से देश पर लगे पाप कलंक के स्मारक को धो दें। जितने पाप कलंक अभी तक अवशेष हैं वे सारे स्थान उन लोगों को दे दिए जाएं जिनके वास्तव में पहले थे। हिंदू अपने स्थान पर पूजा करें, मुसलमान अपने स्थान पर। ये मेरा निवेदन है कि ये जो कृष्ण जन्मभूमि का उद्धार हुआ ये बहुत बड़ा काम हुआ। ऐसे काम अभी देश में बहुत बाकी हैं और प्रेम से करने हैं। इसी में देश का मंगल, देश की शोभा और हमारे राज्य की शोभा। अब बस मैं एक दो आप समाप्त कर देता हूँ। जाय देख चाहत नहीं कछु देख न मन मोर, बसे सदा मेरे दृगन सोई नंद किशोर। बोल हरिओम।
पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है श्री कृष्ण के नाम धाम गुणों का सुंदर वर्णन, और इसका कैसेट संख्या है 35।